56 से 58 तक चंद आयात जो हैं ये براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہمارے اوپر حق ہے اس کی بات ہے. ان اللہ و ملائکتہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی وہ درود بھیجتے ہیں نبی پر. اب لفظی نر ترجمہ میں نے درود کا اس لیے بولا کہ ہمارے ہاں لفظ درود ہی پڑھا جاتا ہے لیکن یصلون کا معنی ابھی میں لکھاؤں گی آپ کو اس کے مختلف معنی, یہاں صرف ترجمہ اکٹھا کر لیتے ہیں کہ یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے رحمتیں نازل کرتے ہیں نبی پر. پیچھے آیت 43 میں بھی یہی بات گزری, یہاں دوبارہ اسی چیز کو دہرا دیا گیا. تو کیا کرو, یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, اے ایمان والو تم بھی آپ پر رحمتیں اور سلام بھیجا کرو جیسے کہ سلام بھیجا جاتا ہے. یہاں اس آیت کا تھوڑا سا انداز دیکھیے گا, عموماً یا ایھا الذین آمنوا کا جو لفظ ہے نا آیت کے شروع میں آتا ہے, سب جانتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتبا, یعنی کچھ اس طرح کی آیات قرآن پاک میں موجود ہیں. یہاں فرق دیکھیے گا, پہلے اس کام کا جس کا ایمان والوں کو کرنے کا حکم دیا گیا, اللہ نے خود کرنے کی مثال دے دی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں یا رحمتیں بھیجتے ہیں, لہٰذا ایمان والوں تم بھی اس پہ درود بھیجو. اپنی مثال دے کر فرشتوں کا طریقہ بتا کر اللہ نے مسلمانوں کو ایمان والوں کو کہا کہ تم بھی نبی پر درود بھیجو اور اس کے اوپر سلام. اب دو لفظ ہیں اس پہ ہم بات کریں گے انشاءاللہ کہ درود کیا ہے اور سلام کیا ہے, لیکن اگلی آیت کو ساتھ ہی لیں گے کیونکہ اسی سے متعلق ہے. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ, یقیناً وہ لوگ جو ایذا پہنچاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو, یہ کون ہے؟ منافق ہیں. مدنی صورتوں میں ہمیشہ بیچ بیچ میں منافقوں کا ذکر ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نبی کے دور میں آپ کے سامنے فتنے کھڑے کرتے تھے, جنہوں نے زینب کے نکاح کو ہوا بنا دیا, جنہوں نے عائشہ کے اوپر تہمتیں لگا دیں, جنہوں نے آپ کے راستے میں کتنے روڑے اٹکائے. اور آج کے دور کے بھی لوگ, ہر دور کے لوگوں کے نام میں تو نہیں لیتی, آپ کو خود پتہ ہے کہ کون لوگ ہیں جو اللہ کے نبی کو تکلیفیں دیتے ہیں. حال کیا ان کا؟ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ, اللہ نے لعنت کی ان پر دنیا اور آخرت میں. وعد لہم عذاب مہینہ, اور اس نے ان کے لیے اہانت نمیز عذاب تیار کر رکھا ہے. ایسے لوگوں کو حق نہیں پہنچتا اس بات کا کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہیں یا انسان بھی کہیں. لہذا ایسے لوگ, والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات, وہ لوگ جو ایذا پہنچاتے ہیں مومن مردوں اور عورتوں کو, بغیر ما اکتسبوا, بغیر اس کے کہ انہوں نے کوئی گناہ کا ارتکاب کیا ہو. فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا, تو گویا کہ انہوں نے اپنے سر پر بہت بڑا بہتان لیا اور سری گناہ کا بوجھ لے لیا. یاد رکھیے کہ یہ ایمان والوں کو تکلیف دینے کی بات پڑھتے ہوئے میرے دل میں ایک ہوک سی اٹھی. کوئی مسلمان جتنا بھی بے عمل ہو, ایک امتی ہونے کے ناطے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین برداشت نہیں کر سکتا, ان کے کارٹون برداشت نہیں کر سکتا, ان کے نام پہ کتابیں لکھی جانا اور ان کو غلط طریقے سے پیش کرنا یہ پسند نہیں کر سکتا. لیکن کرے کیا پھر جب کوئی ایسا کرے؟ اس کا جواب ہے, تم اپنے عمل کو اور اچھا کر دو, تم خود اس نبی کی سنتوں کے رنگ میں رنگ جاؤ, تم خود نبی کے جیسے بن کے دکھا دو, اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کے انجام کا انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ نے خود ان کے لیے رکھا ہوا ہے کہ ان کا انجام کیا ہے. آپ کہتے ہیں کہ حد قذف جو ہوتی ہے نا وہ 80 کوڑے ہیں, کسی کے اوپر غلط بات کر دینا. سورۃ نور کی آیت 4 میں ہم پڑھ چکے ہیں, جب کوئی کسی مسلمان عورت پہ زنا کی تہمت لگاتا ہے تو 4 گواہ پیش نہ کرے تو 80 کوڑے ہیں. عام لوگوں پہ الزام لگانے کا اتنا گناہ ہے, تو پھر آپ بتا سکتے ہیں کہ جب چنے ہوئے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کہا, مجتبیٰ کہا, جو سید المرسلین تھے, جن جیسا نہ کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا, ان کے بارے میں بات کرنے والوں کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ نے جہنم ایسی تو نہیں بنائی بھی نا, کچھ لوگوں نے اس میں جانا ہے. ہم مسلمانوں کو کیا کرنا ہے؟ اپنے عمل سے اور اپنے قول سے اس بات کی گواہی دینی ہے کہ ہم اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں. اب آتے ہیں اس آیت کے اندر جو لفظ تھا درود اور سلام, اس پہ بات کرتے ہیں. دیکھیں لفظ گزرا ہے سلو, تھوڑا سا اس کو سمجھ لیجئے گا. اللہ کی طرف سے نبی پر صلات کا ترجمہ کیا ہوگا؟ کہ اللہ اپنے نبی پر مہربان ہے, نمبر ایک. یعنی اللہ کا نبی پر درود بھیجنا, نمبر ایک, اللہ ان پہ مہربان ہے. نمبر دو, اللہ اپنے نبی کی تعریف فرماتے ہیں, پریس کرنے کے معنوں میں. تیسری بات, آپ کے کام میں برکت دیتے ہیں, یعنی نبی نے جو کام کیے اللہ نے اس میں برکتیں بھی دی. چوتھا اس کا معنی کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کا نام بلند کرتے ہیں. ورفعنا لک ذکرک, آپ پڑھتے ہیں قرآن پاک میں फिर अगला इसका मानी क्या है कि आप पर अपनी रहमतों की बारिश फरमाते हैं। तो समझ आ गई, अल्लाह के नबी पर दरूद भेजने का मतलब ये पांच हैं तरीके हैं। फरिश्तों की तरफ से नबी सल्लम पर दरूद क्या है? नंबर एक, फरिश्ते आपसे हद दर्जे की मोहब्बत करते हैं। इसमें सबसे बड़ी मिसाल बताएंगे किसी फरिश्ते की? जिब्राइल अलैहिस्सलाम जी, जो आते थे अल्लाह के नबी से इतनी मोहब्बत फरमाते थे। बहुत खूबसूरत बातें मिलती हैं जब आप कभी रिवायत पढ़ते हैं। फिर दूसरा, फरिश्तों का आपके ऊपर दरूद क्या है कि वो आपके हक में अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह आपको ज्यादा से ज्यादा बुलंद मर्तबे अता फरमाए। सोचिए ना, एक बंदा डायरेक्ट आपके साथ इस कॉज में शामिल है, दिन रात काम कर रहा है, मिशन का साथी है, वो दुनिया में अल्लाह का दीन फैलाता है, कुरान के नूर को घर घर पहुंचाता है, कितनी एफर्ट करता है। लेकिन एक बंदा ये सब नहीं कर सकता तो वो घर बैठ के दुआ करता है कि अल्लाह इनको इनके मिशन में कामयाब करना, उसका भी हिस्सा डल गया ना। तो फरिश्ते दुआएं करते हैं कि अल्लाह इस नबी के जरिए इस दीन को जो है वो बुलंद कर दे और आपको फायदे दे। इसी तरह फरिश्तों का आपके ऊपर एक और दरूद क्या है कि फरिश्तों के जरिए अमली तौर पर दीन सर बुलंद कब होता है? जैसे जंगों में फरिश्ते आए, बदर में आए, उहद में आए, या जिस जंग में भी आए, तो ये भी फरिश्तों की तरफ से एक किस्म का आपके ऊपर दरूद था। और इसी तरह से फरिश्तों की दुआ में ये दुआ शामिल है कि आपकी शरीयत को फरोग मिले और आपको मुकामे महमूद पे पहुंचाया जाए। अब ये सारी बातें तो इंसानों की नहीं थी, ये हमने सीख ली इल्म की हद तक पे, लेकिन यहां ये याद रखिए कि मुझे और आपको जो करने को कहा गया इसके बारे में क्या हुक्म है। तो इसको भी समझ लीजिएगा कि जब हमें कहा जाता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजो तो उसका क्या हुक्म है। यहां लफ्ज़ आप देख रहे हैं सल्लु अलैहि, सल्लु के साथ जब अला का सिला आता है, जैसे यहां आ रहा है, तो इसके तीन मुख्तलिफ मानी होते हैं, लिख लें, सारे मिक्स ना कीजिएगा। पीछे जो बात बताई वो अल्लाह और फरिश्तों से मुतल्लिक थी, वो बात पूरी हो गई, उसमें तो कोई बात अलग नहीं रह गई। बस ये बात करके बता दिया कि देखो अल्लाह ताला ने नबी के ऊपर दुरूद का जो हुक्म तुम्हें दिया है ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। तुम्हारे ईमान का तकाजा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूद व सलाम पढ़ा करो और उनके इस मिशन में राही बन जाओ। लेकिन अब ये लफ्ज़ जब खास तौर पे अल्फाज के साथ आता है तो फिर इससे क्या मतलब है? नंबर एक, किसी की तरफ माइल होना, टू इनक्लाइन के मानों में। मुसलमानों को अल्लाह ताला जब ये कहते हैं कि सल्लु अलैहि, तो इसका एक मानी क्या है कि तुम नबी से मोहब्बत करो, उसकी तरफ मोहब्बत के साथ मुतवज्जे होना, उस पर झुकना। तो मुझे और आपको क्या हुक्म है? तुम्हारा दिली रुझान, तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारी हमदर्दियां नबी के साथ हो। तुम्हें सुन्नतें इसलिए प्यारी लगे कि नबी का तरीका था। किसी ने एक बड़ी खूबसूरत कोटेशन भेजी थी एक दफा एक पेपर पे, मतलब वही जो स्लाइड्स में आजकल लोग मैसेजेस भेजते हैं। उन्होंने कहा कि इफ यू वांट टू फॉलो द ब्रांड नेम, यानी अगर तुम किसी ब्रांड को कॉपी करना चाहते हो तो कॉपी करो सुन्नत को, क्योंकि उसका डिजाइनर अल्लाह ताला है। अब जो बात थी वो जैसे भी थी मैंने आपको जैसे बताई, तो अल्लाह के नबी ने जो कुछ थे वो तो अल्लाह के हुक्म से थे ना, तो गोया के फिर हमें सुन्नतों को मान करना है, अल्लाह के नबी से दिली मोहब्बत। फिर सल्लु अला का दूसरा मानी क्या होता है? किसी की तारीफ करना, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफें करो, दिन रात करो। और मुझे तो रबीउल अव्वल में इतना अच्छा लगता है और लोग बड़ा पसंद करते हैं इस मौके पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनना। हम तो यकीन करें जब कुरान में नबी की जिंदगी का कोई वाकया पढ़ते हैं तो उस वक्त ऐसे लगता है कि आज सबसे ज्यादा हमें अच्छा लगा है। तो नबी की तारीफें करनी चाहिए, तनकीद नहीं करनी चाहिए उनके ऊपर। फिर इसी तरह तीसरा क्या है कि किसी के हक में दुआ करना। अब ये लफ्ज जब हम अपने ऊपर ले लेते हैं तो हमें ये बात समझ आ जाएगी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमारा ये मामला। अब यहां सिर्फ इतनी बात कह के इक्तफा करूंगी कि अल्हम्दुलिल्लाह एक पूरी किताब तफहीमु सुन्ना सीरीज की बुक है, पिछले साल रबीउल अव्वल में पढ़ाई थी, जिसमें दो किताबें हैं, हकूक रहमतुल आलमीन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या हकूक है हमारे ऊपर, और इसी तरह से दूसरी एक बुक भी उसी के साथ ही किया, जिसके पास हो वो लिख सकता है नंबर दे के। यानी दोनों बुक्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में थी और डिटेल से पढ़ी थी। उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम पे तकरीबन शायद 13 या 14 हकूक थे एक एक करके, और उस सब को फिर हमने पढ़ा था। मैं आप सबसे ख्वाहिश रखूंगी कि अगर आपको चलते फिरते उठते बैठते मौका मिले तो इन्हीं दिनों में सुन लें, मतलब उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद करना, आपसे प्यार करना, आपके तरीकों को फॉलो करना, ये सब कुछ आ जाता है। अब चलते हैं लफ्ज सलाम पे, ये भी बड़ा अहम है। तो सलाम के भी दो मानी है, जब कहते हैं किसी पे सलाम भेजो तो एक उसका मानी क्या होता है कि हर तरह की आफतों और नकायश से पाक होना। उर्दू में हम लफ्ज बोलते हैं ना सलामती, तुम सलामत रहो, अस्सलामु अलैकुम। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हम सलाम भेजते हैं तो उसका मतलब ये है कि हम ये कहते हैं कि हमारे नबी हर तरह की आफत और तकलीफ से महफूज रहें, सलामत रहें। दूसरा मानी क्या होता है सलाम का? सुलह। सलम के लफ्ज़ में कुरान में हम पढ़ चुके हैं, कहाँ पढ़ा है याद है आपको? अगर वो तुम्हारी तरफ सुलह का हाथ बढ़ाएं तो फजना हिलई, सूरह तौबा। सूरह तौबा में ये लफ्ज़ आता है सलम, यानी सुलह के मानों में। तो सुलह और अदम मुखालफत। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सल्लम व तस्लीमा का मानी क्या है? कि तुम इनके हक में कामिल सलामती की दुआ करो और तुम पूरे दिल जान से इनकी मुखालफत से परहेज करो और इनके सच्चे फरमाबरदार बन जाओ। अब ये तो हो गई आयत। आज मैं और आप सुन रहे हैं, हमारे भी दिल में ख्वाहिश है। यही ख्वाहिश सहाबा के दिल में थी। ये हुक्म उतरा, फौरन सहाबा कराम नबी सल्लम के पास आ गए। अब मैं चंद रिवायात सुनाती हूँ और सिर्फ हदीसों के नंबर नोट कर लें और बाकी चीज़ें मेमोरी में रख लें तो काफ़ी होगा। जब ये आयत नाजिल हुई तो सहाबा ने अल्लाह के नबी से कहा, ए अल्लाह के रसूल, सलाम का तरीका तो आप हमें बता चुके हैं, कौन सा तरीका? नमाज में अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, ठीक है, और मुलाकात के वक्त अस्सलामु अलैकुम कहना। ये तो मैं समझ आ गया, ये बताइए कि हम आप पर सलात कैसे भेजें? समझ आई बात? सलात कैसे भेजें? तो उस पर अल्लाह के नबी ने सहाबा को मुख्तलिफ जवाब जो दिए वो हदीस की रोशनी में क्या है। पहले अल्फाज काब बिन उजरा से हैं और रिवायत है बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिर्मिजी, निसाई, इब्ने माजा, अहमद, इब्ने शैबा, अब्दुल रज़ाक, इब्ने अबी हातिम और इब्ने जरीर। आप कोई एक भी लिख लें तो बहुत है। आपने फरमाया कि हाँ, तुम इस तरह कहो, अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद व बारिक अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इसको हम सब क्या कहते हैं? दरूद इब्राहिमी है। ये थोड़े बहुत अल्फाज के फर्क से हम सब पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, दरूद इब्राहिमी क्यों? ये क्यों नहीं कह दिया कमा सल्लई ताला मूसा, कमा सल्लई ताला ईसा? कोई जवाब देना चाहेगा? जी आप बताइए। जी शाबाश, आपने फरमाया कि मैं अपने बाप इब्राहिम की दुआ हूँ और आपने फरमाया कि मैं अपने बाप इब्राहिम की मिल्लत पे हूँ। तो जो इस्लाम है ना, ये दीन इब्राहिमी की कंटिन्यूएशन है, उसी लिए फिर इब्राहिम का नाम आता है। और मुझे तो ऐसे लगता है कि अल्लाह ताला को इब्राहिम से कोई खास ही प्यार है। वो जैसे दिल में फील होता है ना कि किसी से वाकई बड़ा प्यार है, तो कुरान पढ़ने के बाद ये एहसास होता है कि अल्लाह ताला को हज़रत इब्राहिम से बहुत प्यार था। तो ये है। फिर इसी तरह इब्ने अब्बास से थोड़े से फ़र्क से यही रिवायत है। फिर एक और दुआ है, अब देखिए ये तो हम सब पढ़ते हैं। अब कुछ लोग हैं ना, बस कहते हैं यही दुरूद है और कोई दुरूद नहीं है, हालांकि ऐसी बात नहीं है। इस पे फिर एक और आपको रिकमेंडेशन दूंगी, दुरूद शरीफ के मसाइल, तफ़हीमुस सुन्ना सीरीज की पतली सी बुक है, शुरू की बुक्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़ चुके हैं वो बुक। उसके अंदर सब मसनून दुरूद मौजूद हैं, कब पढ़ने हैं, कितने पढ़ने हैं, उससे क्या फ़ायदा होगा। लेकिन उसमें एंड पे वो भी लिखे हुए हैं कि गैर मसनून दुरूद कौन से हैं, अल्लाह के नबी की ख्वाब में ज़ियारत करनी है, बेटों को देखना है, फुलां करना है। तो वो बुक पढ़ने के बाद इंशाल्लाह विद रेफरेंस आपके पास एक कह सकते हैं कि एक पूरा सैचुरेटेड नॉलेज आ जाएगा दुरूद शरीफ के बारे में। ये चंद बातें सिर्फ मैं इसलिए बता रही हूँ कि आप लोग तफसीर सुन रहे हैं तो ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल महरूम रह जाएं। लेकिन दुरूद के अंदर और दुरूद भी मौजूद हैं, जिसमें से एक दुरूद के अल्फाज क्या हैं? अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व अज़वाजिही व ज़ुर्रियतिही कमा सल्लैता अला इब्राहीम व बारिक अला मुहम्मद व अज़वाजिही व ज़ुर्रियतिही कमा बारक ताला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अब देखिए ये रिवायत मालिक, अहमद, बुखारी, मुस्लिम, निसाई, अबू दाऊद और इब्ने माजा की है। कभी शायद आपने पढ़ा भी नहीं होगा, क्योंकि हमने बचपन से जो नमाज सीखी थी मौलवी साहब के साथ वही नमाज थी, ठीक है। तो कोशिश करके बदल के हम ये भी कभी ना कभी पढ़ सकते हैं। फिर इसी तरह कुछ और फर्क के साथ हदीसें मौजूद है। एक मुख्तसर सा दुरूद है अबू सईद की रिवायत से, अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद अब्दिका व रसूलिका कमा सल्लैता अला इब्राहीम व बारिक अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम। ये भी बुखारी में भी है, मुस्नद अहमद, नसाई और इब्ने माजा में। स्किप करती हूँ बहुत सारे दुरूद को, इसके लिए बेहतर यह है कि आप उसमें से चीज़ों को सुने। लेकिन दुरूद शरीफ के लिए जो तरीका पूछा गया था उसको भी नोट कर लीजिएगा। देखिए नमाज में दुरूद शरीफ कहाँ पढ़ते हैं? बैठ के पढ़ते हैं ना। अगर कोई फ़र्ज अल्लाहु अकबर सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका और उसके बाद दुरूद शरीफ पढ़ने लग जाए, जायज़ होगा? नहीं जायज़ होगा। साहबे कराम सिर्फ अल्फाज नहीं पूछते थे नबी से, तरीका भी पूछते थे, कब पढ़ना है, बैठ के पढ़ना है। तो अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया कि जब नमाज का आखिरी तशहुद हो, जब तुम यानी अत्तहियात पढ़ चुको, तो फिर उसके बाद मेरे ऊपर दुरूद भेजो। तो दुरूद के लिए जो बेस्ट तरीका था वो यही है, और इसी तरह से करना चाहिए। बाज़ लोग कई मुख्तलिफ खुद साख्ता तरीकों से दुरूद शरीफ की बात करते हैं, तो आप देखिए ये सिर्फ इल्म की कमी है, करते मोहब्बत में है, लेकिन नबी सल्लम का तसव्वुर करके खड़े हो जाना और कहना कि दुरूद पढ़ो, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आपको बाज़ रबी अव्वल की महफिलों के बाद दिखती हैं। देखिए मैं अब ज़ाती तौर पर इस पर अपनी कोई राय नहीं दूंगी आपको, लेकिन मैं सिर्फ चंद चीज़ें आपका हक समझते हुए कह दूंगी कि जब ये बात होती है ना कि दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए खड़े हो जाओ, तो खड़ा होना क्या है? कूमु लिल्लाहि क़ानितीन, सूरह बकरा में हम पढ़ते हैं अल्लाह के लिए क्याम करो, क्याम इबादत है। अगर ताज़ीम के लिए आप खड़े होंगे ना, मतलब मैं क्लास में आई और आप मुझे देख के खड़े हो गए, जो हमारे कल्चर में बहुत आम है स्कूलों में टीचर्स के आने पे, आप कहते हैं कि ये जायज़ नहीं है। मुस्लिम स्कूल्स में कभी टीचर्स के आने पे स्टूडेंट्स को खड़ा नहीं किया जाएगा, ठीक है? खड़ा होना अलग। दूसरी बात है, आप किसी को वेलकम कर रहे हैं, मेहमान आ गया उसके लिए खड़े हुए, कोई बड़ा शख्स आया उसका हाथ थामने के लिए, उसके अंदर आपकी इंटेंशन है। जब लोग दीन के नाम पे अगर नबी सल्लम के दुरूद के लिए खास तौर पे खड़े होते हैं, तो दैट मीन के दिस इज पार्ट ऑफ देयर रिचुअल, तो इससे अवॉइड करना चाहिए। फिर दूसरी बात, आप देखिए, आप कहते हैं कि मैंने दुरूद पढ़ा, अल्लाह के नबी मेरे घर आ गए, आपने पढ़ा, आगे आपने पढ़ा, हाउ इज इट पॉसिबल? एक नबी है ना, बार बार हर जगह कैसे जाएंगे? फिर अगली बात देखिए, हम दूसरों को बुलाते हैं, यानी आप किसी बड़े को कहते हैं आओ घर, लोग कहते हैं हम तोहफा दे रहे हैं दुरूद का, आके ले जाएं। मैं आपको फोन करूं सलाम अलैकुम, वो आंटी नजर आइएगा, मैंने आपको एक गिफ्ट देना था, आके मेरे से ले जाएं, मैं अच्छी लगूंगी। हम क्या कहते हैं बड़ों को, मैं आपके घर जाऊं, बैठिए, मैं आपको दूं। फिर दूसरी बात है कि अगर अल्लाह के नबी हर जगह जा रहे हैं इधर से उधर, तो जो लोग रोजे पे जाके वहां दुरूद पढ़ रहे हैं, जो अल्लाह के नबी के रोजे रोजेजुल जन्ना के पास गए हुए हैं, वहां जाके भी आप पे दुरूद पढ़ते हैं, फिर उधर क्या होगा? फिर अगर अल्लाह के नबी इधर भी गए उधर गए, तो फिर मक्का से हिजरत करके मदीना आने की क्या जरूरत थी? और क्या अगर अल्लाह के नबी हर जगह थे, तो क्या कभी आपने एक रिवायत सुनी कि हिजरत मदीना के बाद लोगों ने अल्लाह के नबी को मक्का में भी देखा? डज़न्ट मेक एनी सेंस। वो एक नबी थे, हाँ फरिश्ते कर सकते हैं ऐसे काम, यानी जैसे मलकुल मौत दुनिया में जहां चाहें किसी की जान ले लें, वो फरिश्ते हैं, किसी इंसान के बारे में मैं और आप ये नहीं सोच सकते। तो ये बात का मैंने हल्का सा जिक्र इसलिए किया है कि ये मौजू आपका अधूरा न रहे, अदरवाइज अल्हम्दुलिल्लाह आजकल वेबसाइट पे अगर आप देखें तो रबी अव्वल का एक आइकॉन है, क्लिक करेंगे तो उसमें सारे टॉपिक्स मौजूद हैं। मेरा लिहाज सबसे ज्यादा हमारे रबी अव्वल के महीने की लेक्चर होते हैं, हर साल बहुत ज्यादा डिफरेंट चीजें ऐड होती हैं, तो उसमें एक ये मौजूद है पूरा दुरूद शरीफ के बारे में, कैसे पढ़ूं क्या करूं, तो जिसको मजीद इन्फॉर्मेशन है सुने। लेकिन यहां मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी, जो बातें आपने मेरे मुंह से सुनी है ना, आपने पूरी सुनी है या मैंने आधी सुनाई है, इसको बाहर जाके ना पेश करें। लोगों को जब आधी बात पेश करेंगे ना, वो कहेंगे देखना वो दुरूद का इनकार कर रही है, वो आपको मिलाद पे जाने से रोक रही है, वो आपको ये नहीं कह रही। मैं कुछ नहीं कह रही आपको, मैं आपको वो बात कहने की हकदार हूं जिसकी दलील और सनद मेरे पास मौजूद है। तो बहरहाल ये मौजू तो बहुत लंबा है, लेकिन मेरा दिल है कि हम इस बात को ले। हाँ, दुरूद के बारे में जो चंद चीजें बड़ी अहम है जिससे हम मुसलमान समटाइम दूर हैं, वो क्या है कि कुछ मुकाम ऐसे हैं कि जहां दुरूद पढ़ना फर्ज है। मसलन जब नबी सल्लम का नाम आ जाए, आप एक दफा मिंबर की सीढ़ी पे चढ़ रहे थे और आपने हर सीढ़ी पे चढ़ते हुए कहा आमीन, फिर आमीन, फिर आमीन कहा। साहबा समझे कि आप अल्लाह अकबर की जगह आमीन कह रहे हैं, तो कुलिया बदल गया बाद में। आपने कहा नहीं, मेरे पास जिब्राइल आए थे और उन्होंने मुझसे कुछ दुआएं करवाई थी और मैंने उसमें आमीन कहा था, जिसमें एक ये थी कि जिसके सामने आपका नाम पढ़ा जाए फिर वो उस पर दुरूद ना भेजे तो उस पर अल्लाह की तरफ से लानत है। तो लफ्ज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब देखिए मैंने मोहम्मद क्यों बोला, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा कि मैंने अल्लाह के नबी के लिए बोला। मोहम्मद आ जाए, अहमद आ जाए, तो हमें उस पर दुरूद जरूर पढ़ना चाहिए। बाज नातों में नबी का नाम होता है, अब वो दिल में कैसे पढ़ते होंगे, वो तो लैब में बोल रहे होते हैं। तो अगर अल्लाह के नबी की नात पढ़े, बहुत अच्छी बात है, बड़ी खूबसूरत नातें हैं, तो अल्लाह के नबी की नात पढ़ें, लेकिन कोशिश करें कि उसमें लफ्ज मोहम्मद और अहमद ना आए, दोनों लफ्जों पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना है। आप इशारतन जिक्र कर दें ताकि नाम पे ना आना पड़े। फिर इसी तरह जब हम लिखते हैं तो क्या करें, जैसे हम लिखते हैं मोहम्मद तो ऊपर स्वाद डाल देते हैं, तो इसका हुक्म क्या है? इमाम अहमद बिन हम्बल का अमल क्या था कि जब अल्लाह के नबी का नाम लिखते तो जुबान से पूरा अदा करते, लेकिन लिखने में सिर्फ स्वाद डाल देते। तो यही आज भी करना चाहिए। समटाइम हम इंग्लिश में लिखते हैं मोहम्मद एस डब्ल्यू कुछ डाल देते हैं ना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो जुबान से बोलिए। इसी तरह आप किसी को सलाम का जवाब देते हैं चाहे आप WS कुछ डाल दें लेकिन जुबान से बोलें, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह फ़ायदे की होंगी। फिर इसी तरह आप देखिए कि नमाज में तशहुद में आप पे दुरूद पढ़ना, ये भी नमाज का एक हिस्सा है, इसको लेना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, यानी मैं इन सारी लंबी तफसीलात से आपको कट डाउन करते हुए अगली आयत पे लेके जाना चाहूंगी, ताकि हम ये देखें कि अल्लाह के नबी ने सिर्फ अपनी ही बात हम तक नहीं पहुंचाई। यहाँ लोग कहेंगे लो जी अल्लाह के नबी अपनी तारीफें करवाना चाहते हैं। अच्छा, बाज़ ज़ालिम ऐसे हैं कि वो अल्लाह के नबी की भी बातें सुनकर तनकीद करते हैं। अच्छा जी, इनको बड़ा बनना था तभी तो आपके ऊपर दुरूद भिजवा रहे हैं। एक शख्स ने कहा था कि अल्लाह के नबी, जैसे ईसाइयों ने हजरत ईसा की पूजा की, कि आप भी अपनी पूजा कराना चाहते हैं। तो उस दौर में भी लोग थे ऐसी लंबी जुबान वाले, आज भी ऐसे हो सकते हैं। लेकिन हम सब इसके बारे में क्या कहेंगे कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हिदायत दे और हम सबको सबसे ज्यादा हिदायत दे।